मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 31 जुलाई 2019 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सब काम करते हैं, काम करते करते एक समय ऐसा आता है जबकि हम थकान महसूस करते हैं और यह थकान में रोजाना की थकान की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि अपने पूरे जीवन की यात्रा की थकान की बात कर रहा हूं। इसीलिए आप देखेंगे सरकारी तंत्र में भी बकायदे रिटायरमेंट की एज रखी गई है। कुछ राज्यों में 58 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, कुछ में 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां रिटायरमेंट की उम्र ज्यादा रख दी गई है। कॉलेजेज में 62 ईयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में 65 ईयर्स हैं, लेकिन रिटायरमेंट की एक एज रखी गई है। और ऐसा नहीं कि केवल तंत्रों में ही रिटायरमेंट की एज रखी गई है बल्कि हमने घरों में भी निर्धारित कर लिया है। कैसे? जैसे कि लड़के की शादी हो गई, बहू आ गई, तो अब सास को लगता है कि अब तो बहू आ गई है तो मेरे रिटायरमेंट का समय हो गया। और सच पूछिए तो जब सास और बहू में तकरार होती है तो उसमें बहुत कुछ पॉइंट यह भी होता है कि लो अब बहू आ गई और अभी भी मैं घर में खपी रहूं, मरती रहूं, काम करती रहूं। और पिता के साथ भी लगभग यही होता है। पिता मजदूर थे, किसान थे, उन्होंने अपने जीवन में खूब मेहनत की, या व्यापारी थे तो लगातार लगे रहे। और जब बेटा कमाने के लायक हो जाता है, चाहे वो व्यापार संभाल लिया हो उसने या वो नौकरी में आ गया हो, तो सबसे पहला उसे जो कर्तव्य का बोध होता है बेटे को, वो ये होता है कि नहीं अब पिता को रिटायर कर दो, अब पिता हमारे काम न करें, वो आराम करें। और सच पूछिए तो यह बेटा कर्तव्य बोध से ही प्रेरित होकर के सेम बात अपनी मां के बारे में भी सोचता है और सोचता है कि मेरी मां भी अभी तक खपती रही हैं, लगातार लगी रहती हैं, उन्होंने देखा है अपनी मां को चक्रघन्नी की तरह घर में घूमते हुए, तो अब चूंकि मेरी पत्नी आ गई है तो मां को भी अब इत्मीनान से रहना चाहिए। यह हमारे यहां एक प्रकार से कह लीजिए कि पुत्र का माता पिता के प्रति एक कर्तव्य बोध सा बन गया है। तो मैंने दोनों प्रणालियों की आपसे बात की, अब आइए मैं एक तीसरी प्रणाली की बात करता हूं। और इस प्रणाली का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो दे रहे हैं आपके बहुत ही चहेते खिलाड़ी, आपके दिलअजीज, दिल के बहुत करीब हमारे क्रिकेट कप्तान, पूर्व क्रिकेट कप्तान कहना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन यहां मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात आपको नहीं बताने जा रहा हूं बल्कि मैं बात बताने जा रहा हूं लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी की। रिपीट कर रहा हूं, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी। सुनकर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अटपटा लगे कि भैया ये लेफ्टिनेंट कर्नल कैसे हो गए। देखिए पहले होता यह था, अभी भी होता है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट होती थी या जो आर्मी होते थे वो खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करते थे, वो खिलाड़ियों की जिम्मेदारी लेते थे कि ठीक है खिलाड़ी अपना खेलें। अभी भी होता है खिलाड़ी खेलें और इनको हम अपने यहां नियुक्ति दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, और अपॉइंटमेंट देने के बाद उनको वो खेल के लिए मुक्त कर देते थे। उनको बकायदे सैलरी मिलती थी, उनका बकायदे पदनाम होता है और फिर वो बकायदे अपना खेल में लगे रहते हैं। और नो डाउट कि इससे संस्थान का भी, उनके अपने संस्थान का भी नाम होता है और देश का नाम तो होता ही है। ठीक इसी, आप कह लीजिए कि बिल्कुल इसी स्थिति में हमारे कैप्टन, पूर्व कैप्टन कहना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल क्यों कहे गए, राइट। तो अब देखिए कि उन्होंने क्या नया असाइनमेंट लिया है। मैं नए असाइनमेंट की अब बात कर रहा हूं और मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। हो सकता है कि मेरे इस बात करने के बाद जो बहुत ही कर्तव्य बोध से जो भरे हुए पुत्र हैं या अपने पुत्र के प्रति जो महसूस करते हैं कि उन्हें अब हमारे प्रति ये दायित्व तो निभाना चाहिए, ऐसे माता पिता हैं, अपने लिए कुछ दूसरे तरीके के रास्ते भी निकाल सकें। तो आइए अब देखते हैं दोस्तों, ये जो लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी हैं, ये बकायदे अब एक ही दो दिन में कश्मीर में याद रखिएगा, जो आतंकवाद विरोधी यूनिट है, कश्मीर में आतंकवाद जो विरोधी यूनिट है उसमें तैनात होंगे और उसमें तैनात होकर के वहां लगातार 15 दिन ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी क्या होगी अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद फिर वो बेंगलुरु चले जाएंगे और बेंगलुरु में फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, राइट। तो अब देखिए कि जो कश्मीर में वो आतंकवाद विरोधी यूनिट में काम करेंगे उसके बारे में जानिए। बकायदे एक एरिया है, उस एरिया में धोनी साहब 8-10 सैनिकों के दस्तों के साथ गश्त करेंगे। 8-10 सैनिकों का एक ग्रुप होगा और उसके साथ उस एरिया में वे गश्त लगाएंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि जब वे गश्त लगाएंगे तो उनके शरीर पर 19 किलो वजन का सामान रखा हुआ होगा। कायदे उनकी उस तरह की वर्दी होगी, क्योंकि आतंकी घटनाएं वहां होती हैं, वर्दी होगी, जूते होंगे, ग्रेनेड होगा, हेलमेट होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट होगा, मैगजीन होंगी, ये सारी चीजें, और इनका मिलाकर कुल वजन होगा 19 किलो और वो गश्त लगाएंगे। राइट, ये उनकी पहली ड्यूटी हुई। इसके बाद फिर उनकी गार्ड ड्यूटी भी लगेगी, गार्ड ड्यूटी। और इस गार्ड ड्यूटी में उनको अब होता क्या है, रखवाली का काम मिलेगा, वो अपने यूनिट की रखवाली करेंगे। और यह काम 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में होगा, एक दिन में और रात में। और जब दिन की ड्यूटी होगी तो उसके लिए हमारे इन कैप्टन महोदय को, पूर्व कैप्टन महोदय को, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। हाँ, जब रात की ड्यूटी होगी तो फिर वो दिन में बड़े आराम से कभी भी उठ सकते हैं। तो दिन में भी ड्यूटी करेंगे, रात में भी ड्यूटी करेंगे और गार्ड की ड्यूटी करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में चौकीदारी करेंगे। तीसरी तरह की जो ड्यूटी होगी उनकी पोस्ट पर ड्यूटी होगी, और ये कितनी कठिनता से भरी हुई ड्यूटी होगी इसे अब आप सुनिए। उन्हें बंकर में, जहां सैनिक रहते हैं, जो हमारे बड़े जोखिम वाले क्षेत्र होते हैं, बंकर में बिना पलक झपके खड़ा रहना पड़ सकता है। वहां जो वो ड्यूटी करेंगे इतनी कठिन ड्यूटी होगी, और ऐसा उन्हें 2-2 घंटे की शिफ्ट में 3 बार करना पड़ेगा। और सच पूछिए तो यह जो ड्यूटी है यह धोनी के धैर्य की परीक्षा ले लेगी। चुपचाप खड़े रहना, बिना हिले डुले, लोगों को केवल आते जाते आप देखते रहिए। आप कल्पना करके देखिए कि यह कितना कठिन काम होगा। तो दोस्तों, ये काम करेंगे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी। अब एक सवाल आखिरी में, क्या सच में धोनी को यह सब करने की जरूरत है? उनके पास प्रसिद्धि है, टॉप की प्रसिद्धि है, सेलिब्रिटी हैं, वो क्रिकेट इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुके हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो ये ड्यूटी कर रहे हैं। अब सोचने की बात है हम सब के लिए, हम हर एक हिंदुस्तानी के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, सोचने की बात है कि उन्हें यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दोस्तों, जब आप इसे सोचेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग तरीके के निष्कर्ष निकलेंगे। और ये जो अलग तरीके के निष्कर्ष निकलेंगे, जो शुरू में मैंने बात बताई है, उनसे बिल्कुल अलग होंगे। अलग क्या होंगे, बल्कि उनके उल्टे होंगे। आराम नहीं, काम में सुख। जो सच्चा सुख है वो काम करने में ही मिलता है, चाहे हम उम्र के किसी भी दौर में क्यों न पहुंच जाएं। वो हमारा विशेषाधिकार होना चाहिए। काम को हम अपना प्रिविलेज समझें, बर्डन नहीं। और यही यहां आप महेंद्र सिंह धोनी को समझता हुआ देख रहे हैं। अपने ही खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं कि ठीक है, जो चीजें मैंने नहीं की हैं अब मैं वो चीजें करूंगा, और उन चीजों को करके मैं अपने को पुनर्जीवित करूंगा और अपने में कुछ नया भी जोड़ूंगा। और जैसे ही आप अपने में कुछ नया जोड़ते हैं, चाहे आप 80 साल के ही क्यों न हो जाएं, क्या आप बूढ़ापन का एहसास कर सकते हैं? तो मित्रों, मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसा करके हम सबके सामने एक बहुत जबरदस्त किस्म का लाइव एग्जाम्पल, जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लेफ्टिनेंट कर्नल को मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।